संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर अर्जुन आगे के श्लोक में देते हैं। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोले हे अच्युत आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। मैं संदेह रहित होकर स्थित हूं। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। व्याख्या नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत। अर्जुन ने यहां भगवान के लिए अच्युत संबोधन का प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य है कि जीव तो च्युत हो जाता है, माने वह अपने स्वरूप से विमुख हो जाता है तथा पतन की तरफ चला जाता है, परंतु भगवान कभी भी च्युत नहीं होते, वे सदा एक रस रहते हैं। इसी बात का द्योतन करने के लिए गीता में अर्जुन ने कुल 3 बार अच्युत संबोधन दिया है। पहली बार श्रेणियों रुभयोर मध्ये रथम स्थापय मेच्युत, पहले अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन ने अच्युत संबोधन से भगवान से कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो। ऐसी आज्ञा देने पर भी भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी बार एकोथवाप्यच्युतत समक्षम तत्क्षामयेत्वा महमप्रमेयम्, 11वें अध्याय के 42वें श्लोक में। इस संबोधन से अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप की स्तुति प्रार्थना की तो भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ा। अंतिम बार यहां 73वें श्लोक में त्वत्प्रसादाद् मयाच्युत, इस संबोधन से अर्जुन संदेह रहित होकर कहते हैं कि अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा तो भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ा। तात्पर्य यह हुआ कि अर्जुन की तो आदि मध्य और अंत में 3 प्रकार की अवस्थाएं हुई, पर भगवान की आदि मध्य और अंत में एक ही अवस्था रही, अर्थात वे एक रस ही बने रहे। दूसरे अध्याय में अर्जुन ने शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् कहकर भगवान की शरणागति स्वीकार की थी। इस श्लोक में उस शरणागति की पूर्णता होती है। 10वें अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन से यह कहा कि तुझे बहुत जानने की क्या जरूरत है, मैं संपूर्ण संसार को एक अंश में व्याप्त करके स्थित हूँ। इस बात को सुनते ही अर्जुन के मन में एक विशेष भाव पैदा हुआ कि भगवान कितने विलक्षण हैं। भगवान की विलक्षणता की ओर लक्ष्य जाने से अर्जुन को एक प्रकाश मिला। उस प्रकाश की प्रसन्नता में अर्जुन के मुख से ये बात निकल पड़ी थी कि मेरा मोह चला गया, मोहोयम विगतो मम, 11वें का पहला। परंतु जब भगवान के विराट रूप को देखकर अर्जुन के हृदय में भय के कारण हलचल पैदा हो गई, तब भगवान ने कहा कि यह तुम्हारा मूड भाव है, तुम व्यथित और मोहित मत हो, माते व्यथा माच विमूड भाव है, 11:49। इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन का मोह तब नष्ट नहीं हुआ था। अब यहां सर्वज्ञ भगवान के पूछने पर अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे तत्व की अनादि स्मृति प्राप्त हो गई है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। यहां अर्जुन का सांसारिक और शास्त्रीय दोनों ही प्रकार का मोह नष्ट हुआ है। सांसारिक मोह दूसरे अध्याय का 52वां श्लोक, यदाते मोह कलिलम, और शास्त्रीय मोह श्रुति भी प्रतिपन्नाते, दूसरे अध्याय के 52 और 53वें श्लोकों में इन दोनों मोहों का वर्णन है। अंतःकरण की स्मृति और तत्व की स्मृति में बड़ा अंतर है। प्रमाण से प्रमेय का ज्ञान होता है, परंतु परमात्म तत्व अप्रमेय है, अतः परमात्मा प्रमाण से व्याप्य नहीं हो सकते। अर्थात परमात्मा प्रमाण के अंतर्गत आने वाला तत्व नहीं है, परंतु संसार सबका सब प्रमाण के अंतर्गत आने वाला है और प्रमाण प्रमाता के अंतर्गत आने वाला है। जिससे ज्ञान होता है वो प्रमाण होता है, जिसका ज्ञान होता है वो प्रमेय होता है, और जो ज्ञान करने वाला होता है वह प्रमाता होता है। इसलिए इंद्रियां और अंतःकरण प्रमाण है, संसार प्रमेय है, और स्वयं चेतन प्रमाता है। प्रमाता एक होता है और प्रमाण अनेक होते हैं। प्रमाणों के बारे में कई प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, ये 3 मुख्य प्रमाण मानते हैं। कई प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये 4 प्रमाण मानते हैं। और कई इन 4 के सिवाय अर्थापत्ति, अनुपलब्धि और ऐतिह्य, इन 3 प्रमाणों को और भी मानते हैं। इस प्रकार प्रमाणों के मानने में अनेक मतभेद हैं, पर प्रमाता के विषय में किसी का कोई मतभेद नहीं है। ये प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाण वृत्ति रूप से होते हैं, परंतु प्रमाता वृत्ति रूप नहीं होता, वह तो स्वयं अनुभव रूप होता है। अब इस स्मृति शब्द की यहां व्याख्या की जाती है, यहां इसके लक्षण बताए जाते हैं। पहला, योग दर्शन में आया है अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति ही, माने अनुभूत विषय का न छिपना, माने प्रकट हो जाना, ये स्मृति है। और दूसरा, न्याय शास्त्र में आता है संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, संस्कार मात्र से जन्य हो और ज्ञान हो उसको स्मृति कहते हैं। यह स्मृति अंतःकरण की एक वृत्ति है। यह वृत्ति प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति 5 प्रकार की होती है, और हर प्रकार की वृत्ति के 2 भेद होते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। संसार की वृत्ति रूप स्मृति क्लिष्ट होती है, क्लिष्ट का अर्थ है बांधने वाली होती है, और भगवत संबंधी वृत्ति रूप स्मृति अक्लिष्ट होती है, अर्थात क्लेश को दूर करने वाली होती है। इन सब वृत्तियों का कारण अविद्या है, परंतु परमात्मा अविद्या से रहित है, इसलिए परमात्मा की स्मृति स्वयं से ही होती है, वृत्ति या करण से नहीं। जब परमात्मा की स्मृति जागृत होती है तो फिर उसकी कभी विस्मृति नहीं होती, जबकि अंतःकरण की वृत्ति में स्मृति और विस्मृति दोनों होती है। परमात्म तत्व की विस्मृति या भूल तो असत संसार को सत्ता और महत्ता देने से ही हुई है। यह विस्मृति अनादिकाल से है, अनादिकाल से होने पर भी इसका अंत हो जाता है। जब इसका अंत हो जाता है तो अपने स्वरूप की स्मृति जागृत होती है, तब इसको स्मृतिर्लब्धा कहते हैं। माने असत के संबंध के कारण जो स्मृति सुसुप्ति रूप से थी वह जागृत हो गई। जैसे एक आदमी सोया हुआ है और एक मुर्दा पड़ा हुआ है, इन दोनों में महान अंतर है। ऐसे ही अंतःकरण की स्मृति विस्मृति दोनों ही मुर्दे की तरह जड़ है, पर स्वरूप की स्मृति सुप्त है, जड़ नहीं। केवल जड़ का आदर करने से सोए हुए की तरह ऊपर से वह स्मृति लुप्त रहती है, अर्थात आवृत रहती है। उस आवरण के न रहने पर उस स्मृति का प्राकट्य हो जाता है, तो स्मृति लब्धा कहते हैं। पहले से जो तत्व मौजूद है उसका प्रकट होना स्मृति है, और आवरण हटने का नाम लब्धा है। साधकों की रुचि के अनुसार उसी स्मृति के तीन भेद हो जाते हैं। पहला कर्मयोग अर्थात निष्काम भाव की स्मृति, दूसरा ज्ञान योग अर्थात अपने स्वरूप की स्मृति, और तीसरा भक्ति योग अर्थात भगवान के संबंध की स्मृति। इस प्रकार इन तीनों योगों की स्मृति जागृत हो जाती है, क्योंकि ये तीनों योग स्वतः सिद्ध और नित्य हैं। ये तीनों योग जब वृत्ति के विषय होते हैं तब ये साधन हो जाते हैं, परंतु स्वरूप से ये तीनों नित्य हैं, इसलिए नित्य की प्राप्ति को स्मृति कहते हैं। सारांश यह है कि इन साधनों की विस्मृति हुई है, अभाव नहीं हुआ है। असत संसार के पदार्थों को आदर देने से अर्थात उनको सत्ता और महत्ता देने से राग पैदा हुआ, यह कर्मयोग की विस्मृति है। असत पदार्थों के संबंध से अपने स्वरूप से विमुक्ता हुई, अज्ञान हुआ, ये ज्ञान योग की विस्मृति है। अपना स्वरूप साक्षात परमात्मा का अंश है, इस परमात्मा से विमुख होकर संसार के सम्मुख होने से संसार में आसक्ति हो गई, उस आसक्ति से प्रेम डग गया, यह भक्ति योग की विस्मृति है। स्वरूप की विस्मृति अर्थात विमुक्ता का नाश होना यह स्मृति है। उस स्मृति का प्राप्त होना अप्राप्त का प्राप्त होना नहीं, प्रत्युत नित्य प्राप्त का प्राप्त होना है। नित्य स्वरूप की प्राप्ति होने पर फिर उसकी विस्मृति होना संभव नहीं है, क्योंकि स्वरूप में कभी परिवर्तन हुआ नहीं, वह सदा निर्विकार और एक रस रहता है। परंतु वृत्ति रूप स्मृति की विस्मृति हो सकती है, क्योंकि वह प्रकृति का कार्य होने से परिवर्तनशील है। इन सब का तात्पर्य यह हुआ कि संसार तथा शरीर के साथ अपने स्वरूप को मिला हुआ समझना विस्मृति है, और शरीर तथा संसार से अलग होकर अपने स्वरूप का अनुभव करना स्मृति है। अपने स्वरूप की स्मृति स्वयं से होती है, इसमें करण आदि की अपेक्षा नहीं होती। जैसे मनुष्य को अपने होनेपन का जो ज्ञान होता है उसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जिसमें करण आदि की अपेक्षा होती है वह स्मृति अंतःकरण की होती है। स्मृति तत्काल प्राप्त होती है, उसकी प्राप्ति में देरी अथवा परिश्रम नहीं है। कर्ण कुंती के पुत्र थे, परंतु जन्म के बाद जब कुंती ने उनका त्याग कर दिया तब अधिरथ नामक सूत की पत्नी राधा ने उसका पालन पोषण किया, इससे वे राधा को ही अपनी मां मानने लगे। जब सूर्य देव से उनको यह पता लगा कि वास्तव में मेरी मां कुंती ही है, तब उनको स्मृति प्राप्त हो गई। अब मैं कुंती का पुत्र हूँ, ऐसी स्मृति प्राप्त होने में कितना समय लगा, कितना परिश्रम या अभ्यास करना पड़ा, कितना जोर आया। पहले उधर लक्ष्य नहीं था, अब उधर लक्ष्य चला गया, केवल इतनी बात है। स्वरूप निष्काम है, शुद्ध बुद्ध मुक्त है और भगवान का है। स्वरूप की विस्मृति अर्थात विमुक्ता से जीव सकाम बद्ध और सांसारिक होता है। ऐसे स्वरूप की स्मृति वृत्ति की अपेक्षा नहीं रखती, अर्थात अंतःकरण की वृत्ति से स्वरूप की स्मृति जागृत होना संभव नहीं है। स्मृति तभी जागृत होती है जब अंतःकरण से सर्वथा संबंध विच्छेद होगा। स्मृति अपने ही द्वारा अपने आप में जागृत होती है, अतः स्मृति की प्राप्ति के लिए किसी के सहयोग की या अभ्यास की जरूरत नहीं है। कारण की जड़ता की सहायता के बिना अभ्यास नहीं होता, जबकि स्वरूप के साथ जड़ता का लेश मात्र भी संबंध नहीं है। स्मृति अनुभव सिद्ध है, अभ्यास साध्य नहीं है। इसलिए एक बार स्मृति जागृत होने पर फिर उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी पड़ती। स्मृति भगवान की कृपा से जागृत होती है। कृपा होती है भगवान के सन्मुख होने पर, और भगवान की सन्मुखता होती है संसार मात्र से विमुख होने पर। जैसे अर्जुन ने कहा कि मैं केवल आपकी आज्ञा का ही पालन करूंगा, करिष्ये वचनम तव, ऐसे ही संसार का आश्रय छोड़कर केवल भगवान के शरण होकर यह कह दे कि हे नाथ, अब मैं केवल आपकी आज्ञा का ही पालन करूंगा। तात्पर्य है कि इस स्मृति की लब्धि में साधक की सन्मुखता और भगवान की कृपा ही कारण है। इसलिए अर्जुन ने स्मृति के प्राप्त होने में केवल भगवान की कृपा को ही माना है। भगवान की कृपा तो मात्र प्राणियों पर अपार, अटूट, अखंड रूप से है। जब मनुष्य भगवान के सन्मुख हो जाता है तब उसको उस कृपा का अनुभव हो जाता है। त्वत् प्रसादात् मया च्युत, इन पदों से अर्जुन ये कह रहे हैं कि आपने विशेषता से जो सर्व गुह्यतम तत्व बताया उसकी मुझे विशेषता से स्मृति आ गई कि मैं आपका ही था, आपका ही हूं और आपका ही रहूंगा। ये जो स्मृति आई है ये मेरी एकाग्रता से सुनने की प्रवृत्ति से नहीं आई, मेरे एकाग्रता से सुनने का फल नहीं है, प्रत्युत यह स्मृति तो आपकी कृपा से आई है। पहले मैंने शरण होकर शिक्षा देने की प्रार्थना की थी और फिर ये कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, परंतु मुझे जब तक वास्तविकता का बोध नहीं हुआ तब तक आप मेरे पीछे पड़े ही रहे। इसमें तो आपकी कृपा ही कारण है। मुझे जैसा सन्मुख होना चाहिए था वैसा मैं सन्मुख नहीं हुआ हूं, परंतु आपने बिना कारण मुझ पर कृपा की। मुझ पर कृपा करने के लिए आप अपनी कृपा के परवश हो गए, वशीभूत हो गए और बिना पूछे ही आपने शरणागति की सर्व गुह्यतम बात कह दी। इसी 18वें अध्याय में 64वें, 65वें और 66वें श्लोक में उसी अहेतु की कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ है। स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, अर्जुन कहते हैं कि मूल में मेरा ये संदेह था कि युद्ध करूं या न करूं। न चैदत वित्मह कतरन्नो गरी, यह 2:6, ये मेरा संदेह सर्वथा नष्ट हो गया है और मैं अपनी वास्तविकता में स्थित हो गया हूं। वह संदेह ऐसा नष्ट हो गया है कि न तो युद्ध करने की मन में रही और न युद्ध न करने की मन में रही। अब तो यही एक मन में रही कि आप जैसा कहें वैसा मैं करूं, अब तो बस आपकी आज्ञा का ही पालन करूंगा। करिष्ये वचनम तव, अब मुझे युद्ध करने अथवा न करने से किसी तरह का किंचित मात्र भी प्रयोजन नहीं। अब तो आपकी आज्ञा के अनुसार लोक संग्रहार्थ युद्ध आदि जो कर्तव्य होगा वो करूंगा। अब एक बात ध्यान देने की है कि पहले कुटुंब का स्मरण होने से अर्जुन को मोह हुआ था। उस मोह के वर्णन में भगवान ने यह प्रक्रिया बताई थी कि विषयों के चिंतन से आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना पैदा होती है, कामना से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से मोह पैदा होता है, मोह से स्मृति भ्रंश होता है, स्मृति भ्रंश से बुद्धि नाश होता है और बुद्धि नाश से पतन होता है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम है, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति भी भ्रम है, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। अर्जुन भी यहां उसी प्रक्रिया को याद दिलाते हुए कहते हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया और मोह से स्मृति भ्रष्ट होती है, वह स्मृति मिल गई। नष्टो मोह है स्मृति लब्धा, स्मृति नष्ट होने से बुद्धि नाश हो जाता है। इसके उत्तर में अर्जुन कहते हैं कि मेरा संदेह चला गया, गत संदेह है, बुद्धि नाश से पतन होता है। इसके उत्तर में अर्जुन कहते हैं कि मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हूँ, स्थितोस्मि। इस प्रकार उस प्रक्रिया को बताने में अर्जुन का तात्पर्य है कि मैंने आपके मुख से ध्यान पूर्वक गीता सुनी है, तभी तो आपने सम्मोह का यहाँ प्रयोग किया है और सम्मोह की परंपरा कहाँ कही यह भी मुझे याद है, परंतु मेरे मोह का नाश होने में तो आपकी कृपा ही कारण है। यद्यपि वहां का और यहाँ का दोनों का विषय भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, क्योंकि वहां विषयों के चिंतन करने आदि क्रम से सम्मोह की बात आई और यह सम्मोह मूल अज्ञान का वाचक है, फिर भी गहरा विचार किया जाए तो भिन्नता नहीं दिखेगी। वहां का विषय भी यहां आया है। दूसरे अध्याय के 61वें से 63वें श्लोक तक भगवान ने यह बात बताई कि इंद्रियों को वश में करके अर्थात संसार से सर्वथा विमुख होकर केवल मेरे परायण होने से बुद्धि स्थिर होती है, परंतु मेरे परायण न होने से मन में स्वाभाविक ही विषयों का चिंतन होता है। विषयों का चिंतन होने से पतन ही होता है, क्योंकि यह आसुरी संपत्ति है। परंतु यहां उत्थान की बात आई है कि संसार से विमुख होकर भगवान के सन्मुख होने से मोह नष्ट हो जाता है, क्योंकि यह दैवी संपत्ति है। तात्पर्य यह हुआ कि वहां भगवान से विमुख होकर इंद्रियों और विषयों के परायण होना पतन में हेतु है, और यहां भगवान के सन्मुख होकर भगवान के वास्तविक संबंध की स्मृति आने में भगवत कृपा ही हेतु है। भगवत कृपा से जो काम होता है वह श्रवण मनन निधिध्यासन ध्यान समाधि आदि साधनों से नहीं होता, कारण कि अपना पुरुषार्थ मानकर जो साधन किया जाता है उस साधन में अपना सूक्ष्म व्यक्तित्व अर्थात अहम भाव रहता है। वह व्यक्तित्व साधन में अपना पुरुषार्थ न मानकर केवल भगवत कृपा मानने से ही मिटता है। मार्मिक बात, अर्जुन ने कहा कि मुझे स्मृति मिल गई, स्मृति लब्धा, तो विस्मृति किस कारण से हुई? जीव ने असत के साथ तादात्म्य मानकर असत की मुख्यता मान ली, इसी से अपने सत स्वरूप की विस्मृति हो गई। विस्मृति होने से इसने असत की कमी को अपनी कमी मान ली, अपने को शरीर मानने तथा शरीर को अपना मानने के कारण इसने असत शरीर की उत्पत्ति और विनाश को अपनी उत्पत्ति और विनाश मान लिया, एवं जिससे शरीर पैदा हुआ उसी को अपना उत्पादक मान लिया। अब कोई प्रश्न करे कि भूल पहले हुई कि असत का संबंध पहले हुआ? माने भूल से असत का संबंध हुआ कि असत के संबंध से भूल हुई? तो इसका उत्तर यह है कि अनादि काल से जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए जीव को जन्म मरण से छुड़ाकर सदा के लिए महान सुखी करने के लिए, केवल अपनी प्राप्ति कराने के लिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया। भगवान का अकेले में मन नहीं लगा, एकाकी न रमते, इसलिए उन्होंने अपने साथ खेलने के लिए मनुष्य शरीर की रचना की। खेल तभी होता है जब दोनों तरफ के खिलाड़ी स्वतंत्र होते हैं, अतः भगवान ने मनुष्य शरीर देने के साथ साथ इसे स्वतंत्रता भी दी और विवेक भी दिया। दूसरी बात, अगर इसे स्वतंत्रता और विवेक न मिलता तो यह पशु की तरह ही होता, इसमें मनुष्यता की किंचन मात्र भी कोई विशेषता नहीं होती। इस विवेक के कारण असत को असत जानकर भी मनुष्य ने मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया और संसार के भोग और संग्रह में आसक्त हो गया। असत में आसक्त होने से ही भूल हुई। असत को असत जानकर भी यह उसमें आसक्त क्यों होता है? इसका कारण यह है कि असत के संबंध से प्रतीत होने वाले तात्कालिक सुख की तरफ तो यह दृष्टि रखता है, पर उसका परिणाम क्या होगा उस तरफ अपनी दृष्टि रखता ही नहीं। जो परिणाम की तरफ दृष्टि रखते हैं साधक होते हैं, और जो परिणाम की तरफ दृष्टि नहीं रखते हैं वे संसारी होते हैं। इसलिए असत के संबंध से ही भूल पैदा हुई है। इसका पता कैसे लगता है? जब अपने अनुभव में आने वाले असत की आसक्ति का त्याग करके परमात्मा के सन्मुख हो जाता है, तब यह भूल मिट करके स्मृति जागृत हो जाती है। इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा से विमुख होकर जाने वे असत में आसक्ति होने से ही यह भूल हुई है। असत को महत्व देने से होने वाली भूल स्वाभाविक नहीं है, इसको मनुष्य ने खुद पैदा किया है। जो चीज स्वाभाविक होती है उसमें परिवर्तन भले ही हो पर उसका अत्यंत अभाव नहीं होता है, परंतु भूल का अत्यंत अभाव होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि इस भूल को मनुष्य ने खुद उत्पन्न किया है, क्योंकि जो वस्तु मिटने वाली होती है वह उत्पन्न होने वाली ही होती है। इसलिए इस भूल को मिटाने का दायित्व भी मनुष्य पर ही है, जिसको यह सुगमता पूर्वक मिटा सकता है। अपने द्वारा उत्पन्न की हुई इस भूल को मिटाने में मनुष्य समर्थ और सबल है। भूल को मिटाने की सामर्थ्य भगवान ने पूरी दे रखी है। भूल मिटते ही अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति अपने आप जागृत हो जाती है और मनुष्य सदा के लिए कृतकृत्य ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्त प्राप्तव्य हो जाता है। अब तक मनुष्य ने अनेक बार जन्म लिया है और अनेक बार कई वस्तुओं व्यक्तियों परिस्थितियों अवस्थाओं घटनाओं आदि का मनुष्य को संयोग हुआ है, परंतु उन सभी का उससे वियोग हो गया और वो स्वयं ही रहा। कारण कि वियोग का संयोग अवश्यंभावी नहीं है, पर संयोग का वियोग अवश्यंभावी है। इससे सिद्ध हुआ कि संसार से वियोग ही वियोग है, संयोग है ही नहीं। अनादि काल से वस्तुओं आदि का निरंतर वियोगी होता रहा है, इसलिए वियोगी सच्चा है। इस प्रकार संसार से सर्वथा वियोग का अनुभव हो जाना योग है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम 6:23। यह योग नित्य सिद्ध है। स्वरूप अथवा परमात्मा के साथ हमारा नित्य योग है। कर्मयोग तथा ज्ञान योग में स्वरूप के साथ नित्य योग है और भक्ति योग में भगवान के साथ नित्य योग है, और शरीर और संसार के साथ नित्य ही वियोग है। संसार के संयोग की सद्भावना होने से वास्तव में नित्य योग अनुभव में नहीं आता। सद्भावना मिटते ही नित्य योग का अनुभव हो जाता है, जिसका कभी वियोग हुआ ही नहीं। संसार से संयोग मानना ही विस्मृति है, और संसार से नित्य वियोग का अनुभव होना वास्तव में संसार के साथ मेरा संयोग था नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं, इसका अनुभव हो जाने का नाम स्मृति है। परिशिष्ट भाव लौकिक स्मृति तो विस्मृति की अपेक्षा से कही जाती है, पर अलौकिक तत्व की स्मृति विस्मृति की अपेक्षा से नहीं है, प्रत्युत अनुभव रूप है। इस तत्व की निरपेक्ष स्मृति जिसको अनुभव भी कहते हैं, वही यहां स्मृति लब्धा के रूप में कहा गया है। वास्तव में तत्व की विस्मृति होती नहीं है, प्रत्युत विमुक्ता होती है। तात्पर्य है कि पहले ज्ञान था फिर उसकी विस्मृति हो गई, इस तरह तत्व की विस्मृति नहीं होती। ज्ञान होने पर कोई नयापन नहीं दिखता, मानो ऐसा कि पहले तो अज्ञान था और अब ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं। ज्ञान होने पर ऐसा अनुभव होता है कि तो सदा से ही था, केवल मेरी इधर दृष्टि नहीं थी। अगर पहले अज्ञान था और फिर ज्ञान हो गया तो ज्ञान में सादीपना आ जाएगा, जबकि ज्ञान सादी नहीं अनादि है। सादी का मतलब जो आदि वाला हो, और जो अनादि होता है वो अनंत होता है। अगर ऐसी विस्मृति माने तो स्मृति होने के बाद फिर विस्मृति हो सकती है। और गीता में कहा है कि यस ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, 4:35, अर्थात जिसको जान लेने के बाद फिर मोह नहीं होता। अभाव रूप असत को भाव रूप मानकर महत्व देने से तत्व की तरफ से वृत्ति हट गई, इसी को विस्मृति कहते हैं। वृत्ति का हटना और वृत्ति का लगना ये साधक की दृष्टि से है, तत्व की दृष्टि से नहीं है। तत्व की तरफ से वृत्ति हटने पर अथवा विमुक्ता होने पर भी तत्व तो झोंका त्यों रहता है। अभाव रूप असत को अभाव रूप से मान ले तो भाव रूप तत्व स्वतः झोंका त्यों रह जाएगा। विचार दो तरह का होता है, एक विचार करना होता है और एक विचार उदय होता है। जो विचार किया जाता है उसमें तो क्रिया है, परंतु जो विचार स्वतः उदय होता है उसमें क्रिया नहीं है। विचार करने में तो बुद्धि की प्रधानता रहती है, पर विचार उदय होने पर बुद्धि से संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः तत्वबोध विचार करने से नहीं होता है, प्रत्युत विचार के उदित होने से होता है। तात्पर्य है कि तत्व प्राप्ति के उद्देश्य से सत असत का विचार करते करते जब असत छूट जाता है तब संसार है ही नहीं, संसार हुआ ही नहीं, संसार होगा ही नहीं, और संसार का होना संभव ही नहीं, ऐसा विचार उदित होता है। विचार का उदय होते ही विवेक बोध में परिणित हो जाता है, वहां संसार लुप्त हो जाता है और तत्व प्रकट हो जाता है। मानी हुई संबंध की बात मिट जाती है और वास्तविकता रह जाती है। विचार का उदय होने को यहां स्मृति लब्धा कहा है। अपरा प्रकृति भगवान की है, परंतु हमने गलती की है कि अपरा के साथ हमने अपना संबंध जोड़ लिया और उसको हमने अपने लिए भी मान लिया। यह संबंध हमने जोड़ा है और इसको छोड़ने की जिम्मेदारी भी हमारे पर ही है। अपरा के साथ संबंध मानने से ही भगवान के नित्य संबंध की विस्मृति हुई है और हम बंधन में पड़े हैं। इसलिए अपरा के संबंध विच्छेद से ही हमारा कल्याण होगा। अपरा से संबंध विच्छेद करने के लिए शरीर मेरा और मेरे लिए नहीं है, यह विवेक को महत्व देना है। विवेक को महत्व देने से अपरा मेरी और मेरे लिए है ही नहीं, यह स्मृति प्राप्त हो जाती है। अर्जुन को द्वैत अथवा अद्वैत तत्व का अनुभव नहीं हुआ, प्रत्युत द्वैत अद्वैत से अतीत वास्तविक तत्व का अनुभव हुआ है। कारण कि द्वैत अद्वैत तो मोह है, द्वैत अद्वैत महामोह माहेश्वर तंत्र में आया है। अहो माया महामोह द्वैताद्वैत विकल्पना, अवधूत गीता में। जबकि अर्जुन का मोह नष्ट हो गया, जीव अनादि काल से स्वतः परमात्मा का है, केवल संसार के आश्रय का त्याग करना है। अर्जुन को मुख्य रूप से भक्ति योग की स्मृति हुई है। कर्मयोग तथा ज्ञान योग तो साधन है, पर भक्ति योग साध्य है, इसलिए भक्ति योग की स्मृति ही वास्तविक स्मृति है। भक्तियों की स्मृति में वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही है। वासुदेव सर्वम का अनुभव करना स्मृति लब्धा है। यह अनुभव केवल भगवत कृपा से होता है। त्वत् प्रसादात, वचन सीमित होते हैं पर कृपा असीम होती है। चिंतन में तो कर्तृत्व है पर स्मृति में कर्तृत्व नहीं है। कारण कि चिंतन मन से होता है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे अहम है और अहम से परे स्वरूप है, उस स्वरूप में स्मृति होती है। चिंतन तो हम करते हैं पर स्मृति में केवल उधर दृष्टि होती है। विस्मृति के समय भी तत्व तो वैसा का वैसा ही है, तत्व में विस्मृति नहीं है, इसलिए उधर दृष्टि होते ही स्मृति हो जाती है। स्थितोस्मि गत संदेह है। पहले छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना ठीक दिखता था, फिर गुरुजनों के सामने आने से युद्ध करना पाप दिखने लगा, परंतु स्मृति प्राप्त होते ही सब उलझने मिट गई। मैं क्या करूं, युद्ध करूं कि नहीं करूं, ये संदेह संशय शंका कुछ नहीं रही। मेरे लिए अब कुछ करना बाकी नहीं रहा, प्रत्युत केवल आपकी आज्ञा का पालन करना बाकी रहा। करिषे वचनम तव, ये शरणागति है।